ये भक्तियन आज 16 अगस्त 2020 का शुभ दिन आपके लिए मंगल में कल्याणकारी हूँ। कल हमने गीता अध्याय 8 के 20 श्लोक किए थे, आज मैं 21वां श्लोक आपको पढ़कर सुनाती हूँ। अब तो अक्षर की तृप्तस तनाहु परमाम गति यम प्राप्त्यान निवर्तन्ते तद्धनम परमम मम। उसी को अव्यक्त अक्षर ऐसा कहा गया है, उसी को परम गति कहा गया है। तो जिसको प्राप्त होने पर जीव के लोक संसार में नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। वास्तव में परमात्म तत्व वर्णातीत है, इसका वर्णन करना कि परमात्म तत्व क्या है, कैसा है, कहाँ है, बहुत कठिन है। अव्यक्त है, अक्षर है, परम गति है आदि नाम उस तत्व का संकेत मात्र कहते हैं, क्योंकि वह अव्यक्त व्यक्त अक्षय क्षय गति स्थिति आदि से रहित निरपेक्ष तत्व है। उसे प्राप्त होने पर जीव लौट कर संसार में नहीं आता, कारण कि जीव उस परमात्मा का सनातन अंश है, अंश होने से उससे अलग नहीं है। संसार में तो वह भूल से अपने को स्थित मानता है, वास्तव में शरीर ही संसार में स्थित है। स्वयं ही तो आप समझ गए होंगे कि जो भगवान को प्राप्त कर लेता है वो वापस नहीं आता है, क्योंकि जीव जो है वो भगवान का परमात्म तत्व का सनातन अंश है। हमें बांसो जीव लोग के जीव होता है सनातन। 22वां श्लोक है, पुरुषा सपरा पार्थ भक्त लगस्तान भूतानी येन सर्व इदम तत्व। हे पिथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है, जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अन्य अन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। हमने कल भी इस श्लोक को किया है, कहते हैं कि भक्ति से परमात्मा मिलते हैं, कर्म योग तथा ज्ञान योग तो साधन है, वो भक्ति योग साध्य है। साध्य मतलब जिसको हम जिसको जैसे हमने प्राप्त करना है, जिसके लिए हमारे मन में एक विशेष प्रेम है, इच्छा है, चाहना है, उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना है, हमें जनता जनार्दन की जीव मात्र की सेवा करनी है, कर्म योग करना है और ज्ञान करना है कि हम सब एक ही हैं, किससे ईर्ष्या करें किससे द्वेष, हम सब तो एक ही परमात्मा के अंश हैं। 23वां श्लोक है, युक्त काले त्वनावित आवितम चैव योगिना प्रयाता यान्ति तम कालम भक्ष्यामि भर्तृ शवः। परंतु हे भर्तृवंशी श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल अर्थात मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौट कर नहीं आते, जिस मार्ग में गए हुए आवृत्ति को प्राप्त होते हैं अर्थात पीछे लौट कर आते हैं, उस काल को दोनों मार्गों को मैं कहूँगा। कौन से लोग किस मार्ग से मनुष्य जाकर लौट आता है और किस मार्ग से जाकर के भी नहीं लौटता है, उसके विषय में आप व्याख्या करेंगे। जैसे किसी स्थान पर हमारी कोई वस्तु कपड़ा फैलर पे आदमी छूट जाती है तो उसे लेने के लिए हम वापस स्थान पर जाते हैं, ऐसे ही संसार में किसी वस्तु व्यक्ति में मनुष्य की आसक्ति रहती है तो उसे पुनः लौट कर संसार में आना पड़ता है। तात्पर्य है कि परिवर्तनशील शरीर संसार के साथ संबंध रखने से पीछे लौट कर आना पड़ता है और शरीर संसार के संबंध न रखने से पीछे लौट कर नहीं आना पड़ता है। इसके विषय में आपको एक कथा सुनाती हूँ, मुझे याद आ गई अभी बैठे बैठे। एक महात्मा थे, उनके पास 20 सोने की अशक्तियाँ थी, वो अशक्तियों को साथ लेते ही घूमते थे। घूमते घूमते जब वो उत्तर भारत में आए और किसी सज्जन के घर ठहरे अपने भक्त के पास, और कुछ दिन ठहरने के बाद उन्होंने कहा, मेरा ये थैला आप रख लो माता जी, मैं दक्षिणी भारत जा रहा हूँ, लौट करके आपसे ले लूंगा। माता जी ने वो थैला रख लिया और महात्मा जी चले गए। एक दो महीने बीत गए, महात्मा जी नहीं आए। दो तीन महीने के बाद उन्होंने देखा कि जहाँ थैला रखा हुआ वहाँ एक सांप घूमता है, रोज घूमता है, छोटा सा सांप निकलता है वहीं से और कहीं घूम कर वही छुप जाता है, जेल में चला जाता है। तो वो रोज सोचते थे, देखो यहाँ हमने उनका एक थैला रखा है, महात्मा जी कब आएंगे, कब अपना थैला ले जाएंगे। तो फिर बड़े साल के पश्चात, वर्ष के पश्चात उन माता जी को स्वप्न आता है, महात्मा जी कहते हैं हे माता ऐसा करो कि मैंने जो आपको थैला दिया था उसको निकालो और उसका भंडारा कर दो तो मेरी गति होगी, नहीं तो मैं इस थैले के लिए हमेशा घूमता रहूंगा। तो माता जी ने ऐसा ही किया, उसके पश्चात उस सांप के दर्शन नहीं हुए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम कुछ धन दौलत लेकर घूमते हैं और अचानक मृत्यु हो जाती है और हमारा मन धन दौलत में लगा हुआ है कि कब जाऊंगा कब वापसी लूंगा, तो मरने पर मन वही चला गया और कहते हैं जहाँ धन रखते हैं वहाँ सांप का दास होता है। तो इस प्रकार की इतनी कई कहानियां हैं और सच्ची कहानियां हैं कि लोगों को जब जिसमें आसक्ति होती है मनुष्य को वो दही लौट कर आता है, अगर पशु में है तो पशु में प्रवेश कर जाता है। तो इसलिए हमें आसक्ति नहीं रखनी है, नहीं तो हमें बार बार लौट कर आना पड़ेगा। लेकिन जो मनुष्य आसक्ति छोड़कर अपने प्राणों का त्याग करते हैं, शरीर को अलग कर देते हैं, उनको वापस नहीं आना पड़ता। अग्नि ज्योति शुक्ला क्षण आशा उत्तरायण तत्ता गंति ब्रम ब्रम दिदो जना। 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं यहाँ पर उत्तरायण और दक्षिणायन की व्याख्या की गई है। वो तो हम सब जानते हैं, उत्तरायण होता है एक दक्षिणायन होता है। जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता और छह महीनों वाले उत्तरायण का अधिपति देवता, उस मार्ग से शरीर छोड़कर गिर हुए ब्रह्म देवता पुरुष ब्रह्म लोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्म के साथ ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, ये बताया उत्तरायण। इसकी व्याख्या पहले साधन अवस्था में जिनके भीतर ब्रह्म लोक की वासना अथवा अपने मत का आग्रह रहा है वे कर्म मुक्ति से पहले ब्रह्म लोक में जाते हैं और फिर महाप्रलय आने पर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। एक ऐसी भी मान्यता है कि जब हमें मुक्त होना है तो पहले हम ब्रह्म लोक में जाते हैं। ब्रह्म लोक में तब तक रहते हैं जब तक महाप्रलय नहीं होती है। जब महाप्रलय हो जाती है ब्रह्मा जी नहीं होते तब हम ब्रह्मा जी के साथ कहाँ पहुँच जाते हैं, भगवान के पास मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्म मुक्ति में ब्रह्म लोक मार्ग में आने वाले एक स्टेशन की तरह है जहाँ भोगों की वासना वाले मनुष्य उतरते हैं, परन्तु जिनमें भोगों की वासना नहीं है वहाँ नहीं उतरते। हमारा कोई प्रयोजन ना तो मार्ग में स्टेशन आए या जंगल क्या फर्क पड़ता है। मतलब ब्रह्म लोक तो एक जैसे हम कहीं जा रहे हैं चंडीगढ़ या दिल्ली तो हम चंडीगढ़ उतर जाते हैं क्योंकि हमने यहाँ होटल में था ना खाना पीना ऐश करनी है, सुखना लेक में स्नान करनी है, ये बात सोच कर हम वहाँ ठहर जाते हैं। लेकिन जिनको नहीं था ना उनको सीधे दिल्ली जाना है और चले जाते हैं। तो ये ब्रह्म लोक जो भगवान के लोक से वो मनुष्य लोक से के बीच में एक स्टेशन है। 25वां श्लोक है धूमो रात्रि तथा कृष्ण चन्म आशा दक्षिणायनम तत्व चंद्र मसम ज्योति योगी प्राप्त निवर्तते। जिस मार्ग में धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और छह महीनों वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गया हुआ योगी सकाम चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त कर लौट आता है तथा जन्म मन को प्राप्त होता है। दक्षिणायन कहते जाता है उसका अनुशा वो फिर जन्मान को प्राप्त होता है। 26वां श्लोक है शुक्ल कृष्ण गति हेते जगता शाश्वते मते एक वर्तते पुनः, क्योंकि शुक्र और कृष्ण दोनों गतियां अनादिकाल से जगत प्राणी के साथ संबंध रखने वाली मानी गई हैं। इनमें गति में जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता और दूसरी गति में जाने वाले को पुनः लौटना पड़ता है। इसमें श्लोक है नैते सती पार्थ जानन योगी मुहूर्ते कश्चना तस्मात् सुदेशु कालेषु योगी युक्तो भव अर्जुना। हे पृथानंदन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता, अतः हे अर्जुन तू सब समय में योग युक्त संतम स्थित हो जा। कहते हैं कि हे अर्जुन तू सब उसमें, जो सब उसमें रात दिन सुबह जब भी मतलब है हमें समता में स्थित हो जाना, भगवान का सम्मान करना है, तो फिर इससे हमारी मुक्ति हो जाती है। सकाम भोग तथा संग्रह की कामना वाला मनुष्य ही मोहित होता है, पर जन्म में जन्म मन में जाता है। शुक्ल और कृष्ण मार्ग को जानने वाला मनुष्य निष्काम कर्म योगी हो जाता है, इसलिए वह जन्म मन नहीं जाता तथा कृष्ण मार्ग को प्राप्त नहीं होता। 28वां श्लोक है, वेदेश यज्ञेश तपस्व चैव दानेश यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अतेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानो उपैति चर्यम। योगी भक्त मतलब योगी किसको कहा गया, भक्त को, इसको इस अध्याय में वर्णित विषय को जानकर वेदों में यज्ञों में तपों में दान में जो जो पुण्य फल कहे गए हैं उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है और आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त होता है। योगी के विषय में बताते हैं, वो करता तो सब कुछ है लेकिन आसक्ति उसकी किसी में नहीं रहती, ना पाप कर्म तो वो करता नहीं है लेकिन जो कुछ वो पुण्य कर्म करता है उसको भी उसमें भी वो आसक्त नहीं होता है, इनकार नहीं करता है, मैंने किया नहीं करता है। तो ऐसा योगी ऐसा भक्त पुनः मतलब जा करके परमात्मा को प्राप्त हो जाता है और पुनः इस धरती पर नहीं आता है। ओम तत्सदिति श्रीमद भगवत गीता विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमो अध्याय। अब मैं भगतों के संस्मरण आपको पढ़कर सुनाती हूँ। देखिए एक संस्मरण है हमारे पास प्रियंका ठूसू का, ये हमारी जमीन की एक महिला थी, कहेंगे कन्या कहेंगे, अब उसकी शादी हो गई है, वो दिल्ली चली गई है। वो लिखती हैं, माई परसेप्शन विद स्वामी जी एंड माता जी, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द 50th एडिशन ऑफ द शारद वाणी। आई वॉज 10 years old when I joined Mahadev Tirth in 20 years since. I have met Mataji. I have an interesting story to share. When my mother first time went to attend the satsang at Sarla Bhan, auntie's house, she came back and brought a book which had a cover photo of Mahatma Chitbaji Shri Shri Maharaj, which I felt resembles with Sri Ramakrishna Paramahansa, as I had recently read a chapter on him in my English class, so it was quite fresh in my mind, and I exclaimed, it is Sri Ramakrishna's photo, and with surprise, I asked her from where she got this book. Then she briefed me about Swamiji. It was after many years that I came to know that Swamiji is incarnation of Sri Ramakrishna. I feel myself blessed to get connected with such a noble soul who gave us teaching of Nishkama Seva. The motherly behavior of Mataji and her moral spiritual teachings given to me on Adhyatmic Sunilan attracted me more towards the temple. Swamiji and Mataji's teachings have changed my perception towards life, and I try to follow them in living my life. Priyanka Thusu. हमने एक जर्मनी भक्त वुल्फगैंग हिमेल, जिन्होंने स्वामी जी को देखा है, स्वामी जी के साथ बैठे हैं और स्वामी जी ने उनको अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया है, वो एक जर्मन भक्त। वो क्या लिखते हैं, स्वामी जी एज ए टीचर एंड ए फ्रेंड, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू ऑन द 50th एडिशन ऑफ शारद वाणी। माई नेम इज वुल्फगैंग हिमेल एंड आई एम ए सिटीजन ऑफ जर्मनी। इन द मिडल 70 आई स्टार्ट टू ट्रेवल थ्रू ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। आई क्रॉस इन इंडियन स्टेट्स बाई बसेस ट्रेन और ऑन फूट। In those old days, traveling was very tough, but also very adventurous. In 1979, I was on the way to Manali, as I met Swamiji the first time. He sat under a tree at the river Vyasa near Kullu. As I wanted to pass him, he invited me sit down. And so I stood for some day at that place and had much fun with this strange group. The next years I came again and again and stood with him day and night in this temple. In those days, the facilities, they were very poor compared to nowadays. And so we slept in a cave and lived a very simple life. For me, this man was very freaky. And I enjoyed very much with him. From the mid-80s onward, I stopped traveling to Kullu because I wanted to visit also some more other places in Himalayas. So I went one day to Nepal and did not come back to Kullu. For some years, one night in September 1987, during a stay in Kathmandu, I had a dream. Swamiji was standing right in front of me and asked me to come to Kullu. I woke up immediately and had a feeling as if somebody would be in my room. I felt the presence of Swamiji at the spot. I took the next bus and reached Kullu after a horrible 3 days trip. As I entered the temple, I saw him sitting on a charpai at a veranda in afternoon sun. He offered me to sit beside him and told me that he was waiting for me. I had the feeling that he knew exactly that I would come to visit him after a period of some years. Then he gave me a cigarette, which we smoked together. After the last puff, he said to me, "Now you go." I stood up, I left the temple and took the next bus to Delhi. During the journey, thousands of thoughts martyred my brain and I could not understand what had happened some hours before. This was the last time I saw Swamiji before he took Samadhi in December 1987. Many years later, I came to know that Swamiji was in public meaning of the citizen of Kullu, a saint with spiritual power. Up till today, I remember this strange man very well, and I am very grateful to have met him in a way which is not very common. He will always remain in my heart, and I am very proud to have had him as a friend and teacher. Wolfgang Himmel. Guru Naam Amrit Saman, ek aur sansman hai, Tej Krishna Raina ji ka. Wo kya hai? Shayad Bani ke 50वें अंक के सुनहरे अवसर पर मैं श्री गीता मंत्र तथा कमाल भाई तथा संघ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये पत्रिका निरंतर प्रकाशित होती है और हमारा मार्गदर्शन करती है। माँ देवी तीर्थ नहीं है, ज्ञान का समुन्द्र है और ये समुन्द्र अमृत से परिपूर्ण है। अनेकों श्रद्धालु माँ देवी तीर्थ में आकर इस अमृत को पान करते हैं। उन श्रद्धालुओं में से हमारे घर की बेटियां भूमि बच्चे भी हैं। मुझे भी उनके साथ यहाँ आने का एक अवसर मिला कि मैं श्री गीता मंत्र का आभार प्रकट करूँ। उन्होंने मेरी बिटिया सरला भान को उसमें अपने छत्र छाया में लिया जब वो यहाँ कुल्लू पहाड़ों में एक नन्ही सी बच्ची शिवानी धर को लेकर आई थी। उसमें श्री गीता मंत्र ने माँ देवी की तीर्थ की छत्र छाया में लिया और माँ का दुलार दिया, उनके सारे दुखों का निवारण किया। जब मैं टीके रहना माँ देवी तीर्थ की चिड़िया चढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ भक्ति ज्ञान और प्रेम रूपी अमृत की वर्षा हो रही है। मैंने अपने बच्चों से पूछा कि आप इतने सालों से यहाँ आ रही हो तो आपने यहाँ क्या पाया। बच्चों ने कहा, हम यहाँ माता जी का आशीर्वाद पाते हैं। मैंने कहा, मुझे अमित वर्षा की अनुभूति हो रही है, लेकिन उनको शायद तभी ये बात समझ नहीं आई। तीन दिन से शारदा मां श्री राम कृष्ण परमहंस व स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा हो रही थी। मुझे याद है कि भजन कीर्तन चल रहा था, कुछ भक्तजन नाचने लगे। तब गीता मां जी ने उन्हें प्रवचन देकर कहा कि आप घर से निकल कर यहाँ आते हो तो आपके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसी उद्देश्य से यहाँ आकर मंथन करना चाहिए। श्री माँ जी के वचन सुनकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि ये सब तो मैं अपने बच्चों से पूछना चाह रहा था, और श्री माँ जी ने मेरे मन में चल रहे प्रश्न को इतनी सरलता से सबके समक्ष रख दिया। सब मेरे बच्चों को मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न का समझाया और उन्होंने मुझसे कहा कि श्री माँ जी अब स्वामी जी के सद वचन रामायण श्रीमद भगवत गीता की व्याख्या तो अमृत है। बच्चों के मुख से ये सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई और वही अमृत का रस लेकर मैं महादेवी तीर्थ से निकल पड़ा। कुछ छलक गया और कुछ घर तक पहुंच गया, यही मेरा अनुभव रहा। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि ग्रंथों का अध्ययन व गुरु के प्रवचनों का अमृत पान करोगे तो हमारा जीवन सुख दो आनंद में रहेगा। तेज कृष्ण नारायण। अगले एक छोटा सा वो बधाई का ही है। पुष्पा सूद, उषा सूद, सुदर्शना सूद, संजना डोगर, रोम कांगड़ा कांगड़ा से है ये। शायद वाणी के प्रयास में उनके सुनहरी अवसर पर हम श्री गीता लखमाल भाई जी तरसम को बहुत बहुत बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि ये पत्रिका निरंतर प्रकाशित है और हमारा मार्गदर्शन करती है। ये पुष्पा श्रीमती पुष्पा सूदेव जो है उनके विषय में मैं आपको बताती हूँ। ये है मेरे जो मामी जी थे, छोटे मामी जी, उनकी छोटी बहन। तो मामी जी हमारे घर कुल्लू भी आते थे और मैं भी कभी कभी उनके पास जाती थी। एक बार वह मुझे हरिद्वार और दिल्ली ले गए थे 1966 में। तो जब मैंने संन्यास लिया और तत्पश्चात ये शारदा महासेवा संघ या आध्यात्मिक सम्मेलन की प्रथा चालू हुई तो मेरी मामी जी ने पुष्पा सूद अपनी बहन को बताया कि आप कुल्लू जाया करो, वहाँ पर देखो माता जी ने मतलब गीता जी ने कैसे एक सम्मेलन वो करते हैं और कैसे हम वहाँ हिस्सा लेते हैं। तो पहले के सम्मेलनों में मामी जी भी आई थी तो पुष्पा सूद जी ने उनका बात मानकर उनकी बात मानकर कुल्लू आना शुरू किया था। उन्हीं की छोटी बहन है उषा सूद और उन्हीं की भाभी है सुदर्शना सूद जो गुवारना में है और संजना डोगर पुष्पा सूद जी की बेटी है। तो इन चारों ने शारदा महासेवा संघ को ज्वाइन किया, मेंबर बनी और आध्यात्मिक सम्मेलन में भी आते, गुरु पूजा में भी आते और पूर्ण रूप से सहयोग भी देते हैं। आज भी वो भले आए ना आए, कहना बहुत कठिन होता है, कभी जुड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनका जो सहयोग है प्रतिवर्ष का वो मुझे मिलता रहता है। और पुष्पा जी तो मुझे अपनी पता नहीं क्या मानती हैं, बेटी के समान या बहन छोटी या बड़ी जो भी मानती होंगी, पर उनको इतना चाव होता है कि वो छोटा थोड़ा सा आम का अचार, मीठा थोड़ा सा नमकीन, थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा त्रिफला, थोड़ा सा हरा नमक, पता नहीं क्या क्या बना के भेजती है माता जी। एक होता है कांगड़े में बोलते हैं उसको टेकोटा, वो एक चीज होती है, ऐसा थकू होता है, एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें कुछ अजवाइन आदि डाली जाती रहती है और सिंदूर नमक और उसको घी पर घी के साथ खाया जाता है चावलों के साथ। तो इस बार पुष्पा जी ने गुरु पूजा में तो कोई आ नहीं पाए बाहर के लोग, तो उनके मन में बहुत गई बहुत गई। तो उन्होंने ये छोटा छोटा सामान एक एक पुड़िया में बांध बांध कर मुझे भेजा। तो मुझे तो ये बहुत ही प्रसन्नता होती है कि आप सब जब मुझे कोई माँ का प्यार देता है, कोई बहन का, कोई बेटी का, कोई भक्त का, ना जाने मुझे कितने प्रकार के प्यार मिलते हैं जो मैंने भगवान से इच्छा की थी कि भगवान तू मेरा सब कुछ है। तो मोई नाते अनेक मानिए जो भागे, हे भगवान मेरे और तेरे कई नाते हैं, कभी मैं माँ हूँ तू बेटा है, कभी तू माँ है तो मैं तेरा पुत्र हूँ, कभी मैं तेरी सखा हूँ, कभी तू मेरा सखा है, कभी मैं तेरी सेविका हूँ और कभी तू मेरा मालिक है। इस प्रकार भक्त को चाहिए कि वो सब प्रकार के नाते भगवान से जोड़े, वात्सल्य भाव से भी, कांत भाव से भी, सखा भाव से भी, दास भाव से भी, चारों प्रकार पांचों प्रकार के भाव से अगर हम भगवान से जुड़ जाएं तो भगवान हमारे वात्सल्य भाव को देखकर हमें भक्ति प्रदान करते हैं। भक्ति मिट्टी का मिलना बहुत कठिन है, सब कुछ मिल जाता है। तभी तो चिरंचरित मानस ने कहा है, बार बार बर मांगू भक्ति दहु श्री रंग हर्ष दहु श्री रंग पद सोजन मायनी और सदा सत्संग। तो ये भक्ति जो है ये शिव जी भी मांग रहे हैं भगवान राम से कि मुझे क्या दो, अपने चरणों की भक्ति दो। भक्ति बिना कल्याण नहीं होता है। भक्ति राम नाम मन भी पधरो जिया दे द्वार उसी भीतर जो चहूं भीतर बाहर उजियार। भक्ति एक ऐसा दीपक है, राम नाम का दीपक है जो हमें जीवा उनके द्वार के ऊपर रखना चाहिए, जिससे कि भीतर भी प्रकाश होगा और बाहर भी। तो भक्ति की महिमा बड़ी अनोखी महिमा है। ये भक्ति मिलना सब कुछ मिल जाता है, लेकिन भगवान कहते हैं जब मेरा भक्त मांगता है कि मुझे धन चाहिए तो मैं धन देता हूँ। जब जिज्ञासा करता है कि भगवान आप कैसे हो तो उनकी जिज्ञासा की भी परिपूर्ति करता हूँ। जब होता है तो उसे चुप भी कराता हूँ। लेकिन जब वो भक्ति मांगता है तो मुझे कुछ सोचना पड़ता है कि दो भक्ति कैसे दो भक्ति। भक्ति तो एक सहज चीज नहीं है, सरल नहीं है। लेकिन जो सच्चे भक्त है उनको मैं भक्ति प्रदान करता हूँ और वो मेरी भक्ति पाकर वो जैसे ही हो जाते हैं। तुम्ही जाने तो तुम्ही हो जाए। तुलसीदास जी ने लिखा कि जो भक्त तुम्हें जान लेता है वो तो तुम ही बन जाते हो। क्योंकि अभी हमने गीता के अध्याय में भी गीता अध्ययन में भी जाना पड़ा कि जो भक्त भगवान तक पहुंच जाता है, भगवान के परम धाम में पहुंच जाता है, वो भगवान में ही लीन हो जाता है। इसलिए वो भगवान ही बन जाता है। वेद भी कहते हैं ब्रह्म एव ब्रह्म वेद भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म बन जाता है। लेकिन हमने गीता के इस अध्याय में आठवें अध्याय में जाना कि ज्ञान योग कर्म योग दैट आर ओनली द मीन्स टू रीच द एम टू गेट द एम। इसलिए भक्ति और कर्म से ऊंची है भक्ति जो हमें मिलनी चाहिए। जब हमें भक्ति मिल जाती है भक्त जनों तो भगवान का प्रेम हमें आप सब के रूपों में भगवान आते हैं और हमें अनेकों प्रकार का प्रेम भक्ति और हमें सत्संग प्रदान करते हैं। इसकी मुझे अनुभूति है और मैंने अपनी अनुभूति पर ही आपको सत्संग में सुनाया है कि भगवान की भक्ति अवश्य प्राप्त करनी चाहिए और हमेशा भगवान को स्मरण करना चाहिए, सतत अपने मन में उनका ध्यान रखना चाहिए, फिर भक्ति कठिन नहीं है। चाहे कबीर जी ने कहा कि मैं आगे आगे राम मेरे पीछे पीछे चलते थे। तो इसके विषय में मैं अपनी एक अनुभूति सुनाने जा रही हूँ। 1974 में मैं दिसंबर के महीने में महादेवी तीर्थ गई थी। सर्दी के दिन थे और जनवरी का महीना था, प्रथम जनवरी आई मेरे सन्यास के जीवन की। तो उन दिनों मंदिर में लाइट बहुत कम आती थी, कभी आती थी कभी नहीं। बिजली का कोई खास प्रबंध नहीं था। तो एक लाल टाइम थी जिसको मैं जला करके खाना बनाती या जो भी मेरे नित्य कर्म होते रात के समय मैं करती थी। तो उसमें कोई ऐसा वो भी नहीं था कि रसोई में ही कोई ऐसा स्थान हो जहाँ मैं बर्तन साफ कर सकूं, और कोई ऐसी जगह भी नहीं थी। तो इसलिए मुझे रसोई से बाहर एक छोटा सा दलान था, आंगन जैसा था, वहाँ एक नलका था, वहाँ बर्तन साफ करने होते थे। तो मैं वहाँ जाती लालटेन लेके, तो थोड़ा सा भय भी लगता कि पहाड़ है जंगल है न महाराज जी कोई 20 फुट नीचे कुटिया में रहते हैं, मैं अकेली अपनी कुटिया में हूँ। तो कभी जब बाहर जाती दरवाजा खोल के, मेरी छोटी सी कुटिया थी जो सिद्ध कुटिया के नाम से है, तो मैं उस दरवाजे से बाहर निकलती कुटिया और जंगल ही जंगल घना अंधेरा, तो लाइट भी लेके निकलती तो मुझे लगता है टप टप की आवाज आती है। ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई व्यक्ति आ रहा है, मेरा साथी या कोई मुझे साथ दे रहा है और उसी के सहारे मैं सब काम करती थी तो मुझे वो स्थिति होती थी कि और कोई नहीं है, मेरे भगवान है, मेरे राम है जिनकी मैं आराधना करती हूँ। तो भगवान इस प्रकार अपने भक्त को अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ गीता मां जय माता दी।